نعم داون صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں روحانیت میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ماس پہ اللہ. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ماس پہ اللہ کی جو ٹرمنالوجی ہے, حالانکہ اس کے لغتی معنی بچے بچے کو معلوم ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, لیکن جو ہم سبھی اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے معرفت الہی کا کوئی آسان راستہ اور شارٹ کٹ مل جائے, معرفت الہی کے راستے پر چلنے کے لیے اس ٹرم کو ذہن میں ہر وقت رکھنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر یہ ٹرم ذہن میں نہ رہے ہر وقت تو پھر انسان جو دنیاوی ضروریات ہیں, ترغیبات ہیں, خواہشات ہیں یا مجبوریاں ہیں, ان کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہونے لگتا ہے. اسی لیے وہ لوگ جو معرفت الہی کے راستے پر چلتے ہیں ان کو پہلے دو سبق دے دیے جاتے ہیں کہ اللہ اور ماس پہ اللہ. حالانکہ جو شیخ کامل ہے جہاں کوئی جا کے اپنا آپ سرنڈر کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں, شیخ کامل کو بھی پتا ہے کہ جو آدمی میرے پاس آیا ہے یہ خواہش لے کر, اس کو اللہ اور ماس پہ اللہ کے معنی بڑی اچھی طرح معلوم ہیں. لیکن وہ شیخ کامل پھر بھی اللہ کو ڈیفائن کر دیتا ہے اپنے پاس آنے والے کو, اور اسی طرح ماس پہ اللہ کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہے. ہم میں سے کس کو نہیں معلوم کہ رب کون ہے, کیا ہے, اس لیے کہ خود رب تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اپنے بارے میں بیان کر دیا, لیکن شیخ کامل اس کو پھر بیان کر دے گا کہ رب مظہر ہے اور کائنات مظہر ہے. رب وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے, جس کی کوئی ضد نہیں ہے, جس کی کوئی موافق نہیں ہے, جس کا کوئی ندیم نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں تنہا ہے اور اپنی ذات میں یکتا ہے. یہ وہ تعریف ہے جو رب کی کوئی شیخ اپنے شاگرد کو بتائے گا. یہ میں آپ کو بتا نہیں رہا, میں تو کسی سے پوچھ کے آیا کہ رب کس کو کہتے ہیں. اس صاحب علم نے, اس شریف آدمی نے گیٹ پہ مجھے بتا دیا, میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ متاثر ہو جائیں کہ بہت تعریف کر دی رب کی میں نے, ورنہ نہ تو مجھے یہ سعادت ہی نصیب ہوئی کہ میں کوئی علم حاصل کر پاتا, دنیاوی ہو یا دینی ہو. اسی طرح جو ماس پہ اللہ ہے, اس کی مختصر ترین ڈیفینیشن یہ ہے, ہر وہ چیز جو رب کے علاوہ ہے وہ ماس پہ اللہ ہے. اور علم معرفت کے راستے کا راہی جو ہے وہ ماس پہ اللہ کی طرف نہیں دیکھتا, خواہ وہ کچھ ہی نہ ہو. جب وہ اپنی عبادت کرتا ہے, مجاہدے کرتا ہے, چلے کاٹتا ہے, ذکر اذکار میں ڈوبتا ہے, تو اس ٹرم کا یاد رکھنا اس کو اس بات میں ہیلپ کر دیتا ہے کہ اس کی تمام تر توجہ صرف رب تعالیٰ کی طرف رہتی ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ماس پہ اللہ کی طرف دیکھنا اس راہ میں جرم ہے. یہ بات پہلے قدم پہ ہی शागिर्दों की और मुरीदों के दिमाग में शेख कामिल डाल देती हैं। सबसे बड़ा खदशा उस वक्त पैदा होता है जब हम औलाद की मोहब्बत में या बहन भाइयों की मोहब्बत में या किसी और रिश्ते की मोहब्बत में हम मास्टर अल्लाह की तरफ देखने लगते हैं। इसी तरह शेख कामिल अपने शागिर्द को इस बात की तलकीन करते हैं कि वो बुजुर्ग जिनकी बुजुर्गी एस्टेब्लिश्ड है सवाए उनके अपने शेख को दूसरे तमाम लोगों से बुलंद तसव्वुर किया जाए, लेकिन वो बुजुर्ग जो जिनको किताब ने साबित किया कि वो आम लोगों से बुलंद थे, हदीस ने साबित कर दिया, उन लोगों पर फजीलत न दी जाए अपने शेख को कि वो गुनाह हो जाएगा। लेकिन उन हस्तियों के अलावा बाकी सब पर फजीलत दी जाए अपने शेख को। उसके पीछे फलसफा यही है कि जब हम अपने शेख को दूसरों से अफजल मानते हैं तो हमारे दिल में एहतराम पैदा होता है उनके लिए, और वही एहतराम फिर शेख के साथ मोहब्बत और इश्क में बदलता है। यही जज्बा फनाफिल शेख होने में मदद कर देता है। जहां शागिर्द के लिए ये शरायत हैं, वहां शेख के लिए भी एक शर्त बयान की गई है कि वो अपने शागिर्दों में बहुत ज्यादा मिक्सअप ना हो ताकि एहतराम का रिश्ता कायम रहे, और जब एहतराम का रिश्ता कायम रहेगा तो शागिर्द उससे इस्तफादा ज्यादा कर लेंगे। जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने फकीर को मना किया है कि बुलंद आवाज में कहकहाना लगाए, और एक अजीब बात फरमाई कि अगर फकीर कहकहा लगाता है तो उसके रोब में कमी आ जाएगी, और जब रोब में कमी आएगी तो अपने शागिर्दों को कुछ सिखा नहीं पाएगा। अजीब फलसफा है, लेकिन ये जब बात मेरे इल्म में आई तो मैंने इसे आजमाया, क्योंकि ये जो मगरबी तालीम है ये इंसान के दिमाग को लॉजिकल बनाए रखती है, और वैसे भी मेरे नजदीक इंसान का यकीन कामिल उस वक्त होता है जब किसी चीज को वो खुद परख ले, उसका तजर्बा कर ले, तो उसके नताइज जो किताब में पढ़े हैं उस पर तो हमेशा शक रहेगा, लेकिन जिस चीज को खुद तजर्बा कर ले इंसान उसके नताइज पर उसे पुख्ता यकीन हो जाता है। इसी तरह काफी देर पहले इसी नशिस्त में यहीं पर एक बात मैंने अर्ज की थी कि इंसान के जिस्म में लताइफ हैं और उन लताइफ का अदराक होना जरूरी है, तो शेख कामिल अपने शागिर्द में ये देखना चाहता है कि उसे लताइफ से कम हक का वाकफियत हो जिस्म के लताइफ से, ताकि वो उनको कंट्रोल कर पाए। ये जिस्मानी लताइफ के या उसे रूहानी लताइफ जो भी आप कहना चाहें कि अलावा भी 10 लताइफ हैं। 5 का ताल्लुक दुनिया से है और दूसरे 5 का ताल्लुक रूहानियत से है। तो शागिर्द फिर वाकफियत हासिल करता है उन 10 लताइफ की भी अपने جو لطائف ہیں ان سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اگلا قدم یہ ہے کہ وہ ان 10 لطائف کے بارے میں جانتا ہو کہ وہ کیا ہیں اور وہ کیا رول پلے کریں گے. جو جب لطائف کی میں یہاں بات کر رہا تھا تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ انسان کے بائیں پہلو میں اس جگہ یہ لطیفہ قلب ہے اور اس کے مقابلے یہاں لطیفہ نفس ہے. جب ایک زمانے میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں سے باتیں سن کے حکایات سن سن کے ذہنی طور پر اس طرف کو آ گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کہیں ہلکی سی بھی کوئی سٹر پیدا نہ ہونے پائے, کوئی ہلکی سی بھی رکاوٹ نہ آنے پائے, ہلکی سی بھی دقت نہ ہو. ہم صاحب علم لوگوں سے, اہل اللہ سے دعا کرا کے اپنی زندگی کو ایسی کر لیں کہ اس کے اندر کہیں کوئی منفی چیز باقی نہ رہ جائے. بقول بڑے شاہ صاحب کے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ میری زندگی میں سب اچھی چیزیں میری ہوں اور میرے حصے کی بھی بری چیزیں دوسروں کے حصے میں آ جائیں. جب دعا کا ذکر یہاں ہو رہا تھا تو ایک بات, ایک حدیث میں نے کوٹ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فطرت کے خلاف کی گئی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں. جیسے اس نے ہر چیز کا ایک جوڑا پیدا کیا ہے تو انسانی زندگی میں بھی دونوں ہی چیزیں رکھی ہیں. یہ قلب کو ہم خیر بھی کہہ سکتے ہیں, نفس کو شر کہہ سکتے ہیں. خیر اور شر دونوں رکھے اللہ نے. پھر انسان کو یہ آزادی عطا فرما دی کہ دونوں میں سے جو چاہو تم چن لو. گرچہ انسانی زندگی کے لیے پیرامیٹر سیٹ کر دیے, وہ انسانوں کو بتا دیا کہ زندگی اگر ان پیرامیٹرز کے اندر گزاریں گے تو آپ کے لیے انعام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اگر ان پیرامیٹرز کو ہم ایکسیڈ کرتے ہیں تو اس کی سزا دنیا میں بھی بھگتتے ہیں اور آخرت میں بھی بھگتتے ہیں. تو وہ پیرامیٹر سیٹ کرنے کے بعد انسان کو آزادی دے دی کہ وہ جو چاہے وہ چن لے, خیر یا شر. تو انسان کی زندگی میں دونوں ہی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. جہاں خوشی ہے وہاں دکھ بھی ہیں, خوشحالی ہے تو تنگ دستی بھی ہے, تندرستی ہے تو بیماری بھی ہے, آسانیاں ہیں تو دقتیں بھی موجود ہیں, عروج ہے تو زوال بھی ہے انسان کی زندگی میں. اب جب ہم اس کا یہ پہلو زندگی کا اپنے سے علیحدہ کر دینا چاہتے ہیں دعاؤں کے ذریعے, وظیفوں کے ذریعے, تو ہم پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں. میں نے شاید یہ قصہ ایک بار پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک صاحب میرے مرشد صاحب کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے, یہاں بھی تشریف لاتے ہیں وہ صاحب. تو وہ شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ حضور بہت برے حالات ہیں, میں مشکلات کا شکار ہوا ہوا ہوں, آپ دعا فرما دیں کہ میری یہ مشکلات ختم ہو جائیں. تو میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی, ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے. چونکہ میں ذرا گہرائی سے انہیں دیکھتا تھا تو میں تو نوٹس کر گیا کہ بات پسند نہیں آئی ہے, لیکن وہ صاحب نوٹس نہیں کر پائے. تو میں نے انہیں ہلکا سا اشارہ کیا کہ نہ کریں, छोड़ दें, ये बात न कहिए। लेकिन वो बाज नहीं आए, दो तीन मिनट के बाद उन्होंने फिर कह दिया। फिर मैंने इशारा किया कि छोड़ दें, मत कहिए। लेकिन तीसरी बार कहा तो शाह साहब ने एक जवाब दिया जो शायद मेरे लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक था, और उसने मुझे ऐसा इत्मीनान बख्श दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कभी दिल में कुछ आया नहीं कभी ख्याल। तो शाह साहब ने उससे कहा कि क्यों मियां, अच्छे दिन गुजारने को तुम थे और ये बुरा वक्त कोई और तुम्हारी जगह गुजारेगा। वो एक जुमला था, उनकी समझ में तो नहीं आया उन साहब की, लेकिन मैं इस पर गौर करता रहा कई दिन। तो वो एक ऐसा सबक था कि अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाएगा। पिछले दो तीन महीने से मैं बीमार चला आ रहा हूं और इस बीमारी की सख्तियां खासी शदीद थी। तो एक रोज जो दर्द मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी, बावजूद पूरी तरह जब्त करने के मैं बेड पर उछल रहा था, तो उस आलम में ये बात याद आई शाह साहब की। तो अजीब बात यह है कि वो दर्द जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे और कोई पेन किलर उसे खत्म नहीं कर पा रहा था, वो बड़े इत्मीनान से मैं बर्दाश्त कर गया, बड़े सुकून से। बात एक ही समझ में आई कि रब ताला ने पैदाइश से लेके अब तक एक्सेप्शनली मजबूत जिस्म अता फरमाया और बहुत सुख से रखा रब ने। तो इतना लंबा अरसा जिस रब ने मुझे इतना सेहतमंद रखा, अगर चार दिन की बीमारी आ गई है तो फिर उसको उसी हंसी खुशी से क्यों ना बर्दाश्त कर लिया जाए जिस तरह मैं अपनी तंदुरुस्ती को एंजॉय करता रहा हूं। तो वो शाह साहब की बात गहरी बहुत थी, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि उस पर गौर कर लिया जाए तो इंसान शुक्रगुजारी की तरफ चला जाता है, और शुक्रगुजारी से रब के तो करीब होगा, अपनी नेमतों में इजाफा भी करवाएगा वो, लेकिन उसके साथ साथ एक दुनियावी फायदा हासिल हो जाएगा। मैं ये समझता हूं कि अपने ही जैसे मोहताज बंदे के सामने जाके गिड़गड़ाना इंसान की तौहीन है, मुनासिब नहीं। तो इंसान अपनी तौहीन खुद करने से भी बच जाएगा। बात दूर चली गई। ये जो लताइफ, दस लताइफ जिनका जिक्र कर रहा हूं, इसके अंदर भी एक दूसरे की जिद भी मौजूद है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमें मासूम अल्लाह की तरफ नहीं देखना है और ये चीज पुख्ता हो जाती है हमारे अंदर, हमारी इबादात के अंदर बेपना खुशू खुजू पैदा हो जाता है, और यही खुशू खुजू हमें अपने नफ्स से लड़ने में मदद देता है। और जिस इंसान ने नफ्स को फतह कर लिया, अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने रब को पहचान लिया। ये हम किताबों में पढ़ते हैं कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचान लिया। यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ भी वाक्य पेश आया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रब ताला से ये पूछा था कि या अल्लाह मुझे आसान रास्ता बता दे जिससे मैं तुझे पहचान पाऊं। तो रब ताला का जवाब ये था कि अपने नफ्स को पहचान लो, मुझे पहचान लोगे। तो जब इंसान अपने नफ्स को पहचान लेता है तो फिर रब को पहचानता है। और हम नफ्स को कभी भी फतह नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारे जहन में ये नुक्ता बिल्कुल क्लियर ना हो जाए कि मास पर अल्लाह के किसी चीज को देखना नहीं है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना हमें, तो इंशाल्लाह ताला रब तक पहुंच जाएंगे। ये किसी साहब ने ये सवाल पूछा है कि अल्लाह की रहमत किस तरह होती है, आप क्या करें जो फिर आप पर अल्लाह की रहमत हो, और अल्लाह की रहमत कैसे पहचाने। जब इंसान को इत्मीनान कल्ब हासिल हो जाए, जब किसी किस्म का कोई नुकसान, कोई मुसीबत, कोई दुख उसे परेशान न कर पाए, और बदतरीन हालात में भी उसे ये यकीन कामिल रहे कि मेरा रब मौजूद है, वो मुझे लुक आफ्टर करेगा, डूबने नहीं देगा, तो समझ लीजिए कि इंसान पर अल्लाह की रहमत है। और रह गया ये सवाल कि अल्लाह की रहमत किस तरह होती है, अल्लाह को राजी करके। और अल्लाह को राजी करने का आसान तरीका यह है कि अल्लाह के बंदों को राजी कर दें। ये दूसरा सवाल किसी साहब ने पूछा है कि इन वन ऑफ योर लेक्चर्स यू एडवाइज टू रिपीट फबील आले रबिक मतकज़िबान आफ्टर फजर प्रेयर्स विदाउट टॉकिंग टू एनीबॉडी। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने शायद ये कहा कि किसी से बात ना कीजिएगी, मैंने सिर्फ ये कर्ज किया था कि अगर इस आयत को पढ़ा जाए तो एक एहतियात कर लें कि दिन तलू ना हो पाया हो, दिन की हल्की सी भी रोशनी ना हो। तो अगर हम में से बहुत से ऐसे साहबान हैं जो घर पे नमाज पढ़ते हैं फजर की, वो तो अव्वल वक्त में पढ़ सकते हैं फजर को, नहीं तो बहुत आसान तरीका ये है कि इसको तहज्जुद के बाद पढ़ लिया जाए। तो इसमें एहतियात एक ही है। और जहां तक बात न करने का सवाल है तो मैं एक गुजारिश सबकी खिदमत में किया करता हूं, अगरचे उसके पीछे हिकमत ये नहीं है, बल्कि मेरे जहन में तो ये होता है कि इंसान इबादात को खुद अपनी जात से भी छुपा ले, अपने आप को यकीन दिला सके कि मैं तो इबादत करता ही नहीं, तो कोई नेकी करता ही नहीं, तो वो उतना ही अच्छा है उसके लिए। इसलिए मैं ये अर्ज किया करता हूं कि तन्हाई में पढ़िए। तो जब आप तन्हा हैं तो बात करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसकी तादाद के बारे में उन्होंने पूछा, हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट। ये तादाद मैन टू मैन वेरी कर जाएगी, ये हर एक के लिए एक ही तादाद नहीं है। लेकिन जिन साहब ने ये सवाल पूछा है उनके लिए मैं ये अर्ज कर देता हूं कि अगर आप 717 मरतबा पढ़ सकें इसे, तो इसके असरात बड़ी जल्दी नमूदार हो जाएंगे। ये एक सवाल है, इसका हालांकि जवाब मैं 2-3 बार पहले अर्ज कर चुका, सच्चे वली की पहचान का पता कैसे चल सकता है। शायद वो कहना ये चाह रहे हैं कि सच्चे वली की पहचान क्या है, कोई रूहानी तरीका भी बता दीजिए। साहब, इसका रूहानी तरीका तो मुझे खुद मालूम नहीं है, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद न पकड़ लेता कोई वली अल्लाह। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि रूहानी तरीका सिर्फ एक है, वो जो पर्शियन में गालिबन शेख सादी ने कहा था कि वली को वली पहचानता है। तो आसान तरीन रूहानी तरीका यह है कि आप खुद वली बन जाइए, वली अल्लाह बन जाइए। तो जब आप खुद वली अल्लाह बन जाएंगे तो दूसरे तमाम औलिया अकराम की पहचान हो जाएगी आपको, खासतौर पर वो साहिबान जो साहिब ड्यूटी हैं, उनसे तो हर कोई वाकिफ हो जाता है। तो मेरे नजदीक तो यही एक रूहानी तरीका है कि इंसान खुद वली अल्लाह बन जाए तो दूसरों का पता चल जाएगा। औलिया अकराम के मज़ारात पर हाजिरी का तरीका क्या है, मज़ारात से फैज कैसे हासिल किया जा सकता है? औलिया अकराम के मज़ारात पर हाजिरी के लिए मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि किसी प्रोटोकॉल की किसी चीज की जरूरत नहीं है। इंसान बावजू होकर घर से जाए और तमाम रास्ता दरूद शरीफ पढ़ता रहे और कोशिश करे कि वो लोगों के साथ गुफ्तगू ना करे, एटलीस्ट जाते हुए दिल में दरूद शरीफ पढ़ते रहिए और मसनून तरीका जो है उसके मुताबिक वहां सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबर, और उसके बाद फातिहा पढ़ लीजिए। फातिहा जो तरीका उसका मुकर्रर है वो तो सिर्फ इतना है कि एक बार सूरह फातिहा, तीन बार सूरह इखलास और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर इसकी तरतीब इस तरह से रख पाए आप कि पहले फातिहा जो बताई गई है कि एक बार सूरह फातिहा, तीन बार कुल हुवल्लाह शरीफ, उसके बाद सूरह बकरा का कुछ हिस्सा तलावत कर लें, और अगर सूरह यासीन जुबानी याद है तो सूरह यासीन पढ़ ली जाए और फिर दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह के हजूर ये अर्ज किया जाए कि या बारी ताला, मैंने ये जो तेरा कलाम तलावत किया ये मैंने तेरे और तेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर बतौर नजराना पेश किया, इसे कबूल फरमा के इस सवाब को मेरी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दें, और उसके बाद अगर चाहें तो कह दीजिए कि इसके अलावा जितने पैगंबर, औलिया इकराम और मुसलमान दुनिया से जा चुके उन सब की रूह मुबारक को भी इसका सवाब बख्श दें, और बिलखसूस इस अहले कबर की रूह को इसका सवाब बख्श दें। और उसके बाद जो दुआ आप करना चाहते हैं वो अल्लाह ताला से दुआ करें, रब ताला से दुआ कीजिए, साहिब मजार से नहीं, कि या अल्लाह तू अपनी रहमतों के सदके, अपने गफूर रहीम होने के सदके, अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और ये तेरे नेक बंदे थे इनके सदके मेरे गुनाह मुआफ फरमा दे, मुझ पर रहम कर दे और मुझे ये अता कर दे, मैं तो ये तरीका जानता हूं। और अगर इंसान इस नीयत से गया कि वो जो साहिब मजार हैं उनके रूहानी फैज जो जारी हैं उससे हिस्सा मिल जाए मुझे, उसमें से कुछ अता हो जाए, तो फिर आसान तरीन तरीका यह है कि हमेशा एक मखसूस वक्त पर जाइए, मखसूस जगह खड़े होके फातिहा पढ़िए, कुरान पाक की तलावत कर लीजिए वहां और वापस चले आइए। उससे होगा ये कि इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि रोजाना कोई साहब आपके ऑफिस का दरवाजा खोले अंदर गर्दन करके कहें जनाब अस्सलाम वालेकुम, वापस चले आए, तो चार पांच रोज तो आप वालेकुम अस्सलाम कह देंगे, फिर उसके बाद वो साहब जब आएंगे तो आप उनको देख के खुद ही कहेंगे कि भाई जरा अंदर आइए, या आप रोजाना सलाम करने आते हैं, कोई काम है मुझसे क्या? तो उसके जवाब में भी वो कह दे कि नहीं साहब, आप कोई काम नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करता हूं और आपको सलाम करने आ जाता हूं, काम नहीं है मुझे कोई, चला जाए। तो उसके बाद भी अगर वो आता रहे सलाम करने, तो एक वक्त आएगा कि आप सब लोगों से ये कहेंगे कि यार ये इस आदमी का ख्याल रखना, अगर ये कभी कोई काम कह दे तो वो कर देना है इसे। अब आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस आदमी ने जो सलाम करने आ रहा है उसने आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने आपको फोर्स कर दिया कि आप अज खुद ये कह दें कि इसका जो कोई भी काम हो उसको कर देना खामोशी से। ये फकीर भी खासे अय्यार होते हैं। रूहानियत में भी एक टर्म यूज होती है, अय्यार और मक्कार। वली अल्लाह को, कुछ औलिया अकराम को अय्यार कह दिया जाता है, लेकिन वो उस सेंस में नहीं जिस सेंस में दुनियावी तौर पे कहती हैं। अगरचे मैं ये लफ्ज कह के एक बार भुगत चुका हूं बहुत बुरी तरह। ये उस वली अल्लाह के बारे में कहा जाता है जो अपने आप को मुकम्मल तौर पर छुपाए हुए हो और लोगों को ये जाहिर करे कि मैं तो फासिक व फाजिर हूं, लेकिन अंदर से वो बहुत बड़ा साहिब इल्म हो। तो उसके बारे में रूहानियत में एक टर्म यूज होती है कि वो तो बहुत अय्यार है। रब तआला से ज्यादा सच्चा, रब तआला से ज्यादा स्ट्रेट चलने वाला कौन होगा? लेकिन खुद उसने कुरान में अपने आप को कह दिया कि मैं सबसे बड़ा मक्कार हूं। असल में डिपेंड करता है कि ये लफ्ज इस्तेमाल कहां किया गया। एक साहब से खासी, बल्कि उन साहब की मेरे साथ खासी कुर्बत हो गई थी, तो उनके चाहने वाले बहुत थे। मुझसे गलती ये हो गई कि मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरे सामने वाले लोग जो हैं वहां, वो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत भूल गया कि अपने मुखातिब की जहनी सतह के मुताबिक बात करो। तो मैंने ये नहीं भांपा कि मैं उनको तारीफन अय्यार कह रहा हूं कि वो साहब अंदर से बहुत बड़े साहिब इल्म हैं, सिर्फ आप लोगों पर जाहिर नहीं कर रहे। तो मैंने उनसे कह दिया कि वो अय्यार हैं। तो उनके चाहने वालों ने उन्हें जाके बता दिया, वो नाराज हो गए मुझसे। तो अल्फाज के बारे में इंसान को थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, ये सबक उसके बाद मुझे मिल गया था। तो ये थोड़ी सी अय्यारी इंसान को वहां करनी पड़ जाएगी कि आप फोर्स कर दें उस साहिब मजार की रूह को, जिसके नामा एमाल में आप रोजाना एक मखसूस वक्त पर सवाब का इजाफा करते हैं। और ये सवाब का इजाफा ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े नेक इंसान को भी चाहिए, लेकिन इंसान जो इस दुनिया से चला गया उसका एमाल के साथ सिलसिला मुनकिता हो गया है, वो नेक एमाल नहीं कर सकता, वो सिर्फ जिंदगी तक ही उसका मुजाज है। तो जब कोई और शख्स उस साहिब मजार के नाम एमाल में रोजाना सवाब का इजाफा कराता है, तो वो साहिब मजार पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं एहसानमंदी के जज्बे के साथ। ये इसके अंदर ये जो लफ्ज है एहसानमंदी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर रहा हूं कि एहसानमंदी के जज्बे के साथ। और रब के हजूर वो दुआ करने लगते हैं कि या बारी ताला, तेरे जिस बंदे ने मेरे साथ ये नेकी की है कि मेरे नामा एमाल में सवाब का इजाफा किया है, तो भी उसके साथ मेहरबानी का सलूक फरमा। और चूंकि वो दुनियावी तौर पर तो इस काबिल नहीं रहे दुनिया से चले जाने के बाद कि वो कुछ दे पाए, तो उनके पास सिर्फ अपने रूहानी तसर्रुफात हैं, तो वो अपनी तवज्जो डालनी शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि उनके इल्म से फैज हासिल होना शुरू होता है ऐसे आदमी को जो रोजाना वहां जाके ये काम कर दिखाए कि बगैर दुआ मांगे रोजाना पढ़ाई करके वहां से और ये दुआ करके या अल्लाह इसका सवाब इस अहले कब्र की रूह को बख्श दे चलाए तो फिर वो फोर्स हो जाएंगे वो वली अल्लाह आप पे तो जुड़ाने पे। तो यूं उनसे फैस हासिल हो जाता है। ये एक सवाल वजीफे के बारे में है कि वजीफे के दौरान यह मुकर्रर होना चाहिए। अगर तो इंसान कोई वजीफा इसलिए पढ़ रहा है कि उसकी रूहानी तरक्की हो जाए तो दौरानिया तो उसका मुकर्रर नहीं होता लेकिन तादाद मुकर्रर हो जाती। जैसे मैंने जो पहला सवाल जिन साहब ने पूछा था उनकी तादाद बताई कि इनको 717 मरतबा रोजाना ये पढ़ना पड़ेगी आयत। ये तादाद है दौरानिया नहीं है। दौरानिया हम टाइम मुकर्रर करके पढ़ते हैं और अगर इसको बराए सवाब पढ़ना है वजीफे को चाहे वो कोई हो मैं तो ये अर्ज करूंगा कि आप ना तादाद मुकर्रर कीजिए ना दौरानिया मुकर्रर कीजिए। जब तक आप खुशी से पढ़ सकें उसे पढ़िए। उसकी वजह यह है कि इंसान के लिए बायस शर्मिंदगी है ये बात कि रब तो उस पर अनगिनत एहसान करे उस पर अपनी नवाजशात बगैर गिने कर दे और वो रब को पुकारे तो गिन गिन के पुकारे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान सिर्फ रब को पुकारे न रूहानी तरक्की का कोई लालच न कोई दुनियावी सिर्फ इसलिए कि वो मेरा रब है वो लायक इबादत भी है और मेरा मोहसिन भी है। रब तो है ही है उसके अलावा मोहसिन है कि वो एहसानात बहुत करता है मेरे ऊपर। तो उसको आदमी जब उसका जिक्र करे तो बगैर गिने कर ले। ये मराकबा करने का तरीका किसी साहब ने पूछा है। मसला वही आता है कि मराकबा करके लेंगे क्या। हर आदमी जिससे आप सवाल पूछते हैं उसका जवाब वो अपनी जहनियत के मुताबिक देता है चाहे वो अच्छी जहनियत हो या बुरी। तो मेरे तो अकायद कुछ अजीब गरीब से हैं जो आप हजरात को पसंद नहीं आएंगे। मैं तो एक सीधी सी बात जानता हूं बहुत सादा बात सिर्फ ईंटे नहीं मारिएगा ये बात सुन के। मैं तो ये जानता हूं कि वो मेरा रब है और मैं उसका बंदा वो मेरा आका है और मैं उसका गुलाम वो मुझे पाल रहा है। जब से मेरी फॉर्मेशन शुरू हुई उस वक्त से वो पाल रहा है। जेस्टेशन पीरियड के दौरान मख्फी तरीके पे पाला उसने और दुनिया में सांस लेने के बाद से जाहिर तौर पे भी। तो ये मैं मराकबे और वजाइफ और औराद जिक्र अजकार इनके चक्कर में क्या पढ़ूं। मैं अपने रब को सीधा सीधा पुकारता चला जाऊं और साथ दिल में मेरे अगर ये ख्याल रहे कि मुझे शर्म आनी चाहिए कि मेरा रब कितना अजीम है और मैं उसका जिक्र कितना कम करता हूं। मेरे अकायद तो ये हैं सीधे से न मैं मुजाहिदों के चक्कर में पढ़ना चाहता हूं न चिल्लों के न मराकबे के न तवज्जो के न गौर के कुछ नहीं। मैं तो सीधा अपने रब के साथ एक ताल्लुक रखना चाहता हूं बिल्कुल वो ताल्लुक जो एक गुलाम का अपने आका के साथ हो सकता है। जो सही गुलाम है जिसके रगों में अच्छा खून है वो आका के कोड़े खाकर भी उसकी तारीफ बयान करता है। लोगों में जब अपने आका का जिक्र करता है तो बहुत अच्छे अल्फाज में जिक्र करता है बेशक आका उसे फाके से रखे कोड़े मार दे उसके जिस्म को झुलसाता रहे, लेकिन वो अपने आका की तारीफ ही बयान करेगा। तो यहां तो मामला ये है कि मेरा आका तो ऐसा है जो बहुत खूबसूरत तरीके से लुक आफ्टर करता है, इतना खूबसूरत तरीका कि किसी और के बस की बात नहीं सिवाय मेरे रब के। तो उसका जिक्र किया जाए मराकबे वगैरह में, तो मेरा तो अकायद में कहीं ये चीज फिट नहीं होती कि मैं इन किस्सों में पड़ जाऊं। तो बगैर मांगे वो इतना अता करता है कि मैं ये मराकबों के और वजायफ के चक्रों में कहां पड़ूंगा, उसके साथ सौदेबाजी क्यों करूं मैं, जबकि वो मुझसे सौदेबाजी नहीं करता, कभी सीधा सीधा मुझे लुक आफ्टर करता है बगैर कोई स्ट्रिंग्स अटैच किए, बगैर कोई शरायत प्री कंडीशंस लगाए, आराम से पाल रहा है। तो अक्वात से कहीं ज्यादा आता फरमाता है। तो फिर इन किस्सों में क्या पढ़ा जाए? तो इसलिए भाई मैं तो आपको जवाब वही दे सकता हूं जो मेरा अकीदा है। किसी साहब ने पूछा है कि अगर किसी शख्स को अपने मुर्शिद के बारे में शक हुआ तो क्या बैत टूट जाएगी? बैत नहीं टूटती है। यही किसी नशिस्त में मैंने एक अर्ज की थी कि आप, बल्कि हम सब को चाहिए कि अपने मुर्शिद को इंसान के दर्जे पर रखें, उसको मावराए इंसान न बनाएं, मावराई चीज न बना दें कि वो कोई सुपर ह्यूमन टाइप चीज है। उसका एक फायदा ये होगा क्योंकि मुर्शिद भी बहरहाल इंसान है और गलती करना इंसान की सरशुस्त में दाखिल है। तो जब हम अपने मुर्शिद को इंसान समझते हैं और ये जानते हैं कि ये इंसान होने के नाते इनकी ये जरूरियात भी हैं, इनकी ये कंपल्शंस भी हैं, ये लिमिटेशंस हैं उनकी, और गलती करना इंसान का खासा है, उसकी फितरत में है। तो जब मुर्शिद से कोई गलती होती है, कहीं स्लिप होती है, तो हमें उससे दुख नहीं होगा क्योंकि हमने समझा ही अपने मुर्शिद को इंसान है। सुपीरियर इसलिए मानते हैं अपने मुर्शिद को कि अल्लाह ने उन्हें इल्म अता फरमाया है, तक्वे में वो हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन है इंसान उसके बावजूद भी। तो जब हम अपने मुर्शिद को इंसान समझते हैं तो उनसे अगर कोई गलती हो गई या उनसे उनके किसी फेल से हम ये समझें कि ये मुर्शिद को नहीं करना चाहिए, उससे शक नहीं होगा। हमारे मुर्शिद के एहतराम जो हमारे दिल में है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन शक से बैत टूटती नहीं है। मैं शायद 6 वीक्स के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊं, अब आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह ताला 1 जनवरी के बाद जो संडे आएगी उस पर होगी, अगर मैं मुल्क से बाहर चला गया और जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह फिर 1 जनवरी के बाद संडे जो पड़ेगा उस पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।